समय सार जो कुंदकुंद आचार्य भगवान का हम पढ़ रहे हैं उसके अभी हम 44 नंबर की गाथा पढ़ते हैं और उसमें जो प्रवचन रत्नाकर भाग 3 के 23 नंबर के पृष्ठ पर आए हैं। यहाँ तो बात हम जान रहे हैं कि जो जीवों की मिथ्या मान्यताएं हैं वो कैसी रूल आउट करनी है उसकी बात चल रही है। यानी यहाँ तो बार बार यही बताया जाता है कि जिस प्रकार से ये 8 प्रकार की मिथ्या मान्यताएं बताई थी उस मिथ्या मान्यताओं में जो अनुभवी जीव है या सम्यक दृष्टि जीव है उनके अनुभव में जो आत्मा आ रहा है उस आत्मा के अनुभव में ये बातें नहीं आ रही है ऐसा बताकर सबको उन्होंने इनकी जो मान्यता है कैसी खोटी है इसलिए कहते परमार्थवादियों इन्हें मानता नहीं। सत्यार्थवादियों कहो के परमार्थवादी तो ये बात चल रही थी अपनी। तो यहाँ पर जो बात वो हो रही थी कि शुभ भाव से धर्म होता है ऐसे मानने वालों की बात कैसी खोटी है यह बात चल रही थी कल। अब हम ये पृष्ठ क्रमांक 23 पर नीचे से जो दूसरा बड़ा पैराग्राफ है वो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, मूल बात तो है कि जो शुभ भाव से आत्मा को लाभ होगा ऐसा मानने वालों को आगम से युक्ति से और स्वानुभव से खोटा है यह बात बताना चाहते हैं। ये बात कल चल रही थी अपनी। अब यहाँ पर ये समझा रहे हैं कोई एम माने, कोई जब कहते हैं तो समझना कि ये मिथ्या दृष्टि माने। ऐसा कैसा बताएंगे कि मिथ्या दृष्टि हम माने छे, सिर्फ ऐसा ही बताएंगे कोई लोग जीव ऐसा मानते हैं। तो कोई एम माने के बीजा जीवनी रक्षा करवा माटे के बीजा जीव ने न हणवा माटे भगवान नी दिव्य ध्वनि छूटे छे ते छूटी छे, छूटे छे ने छूटी छे कहना छूटी छे इज राइट। यानी अभी जो छूट गई है वो इस कारण से, कौन सा कारण के जीवनी रक्षा करवा माटे तो ते बराबर नथी भगवाने तो आत्मानी पूर्ण आनंदनो आनंदनी अने वितरागी शांतिनी दशा प्रकट करवा माटे वाणीमा कहियु छे। पहले में पहले ये तो हम उनकी एक बात को हम तो ऐसा समझ सकते हैं कि अभी भी जो दिव्य ध्वनि खिर रही है तो जिनके निमित्त से खिर रही है ऐसे जो सर्वज्ञ भगवान है तीर्थंकर है वे तो वीतरागी है, उनमें अभी किसी को बचाने का ये वगैरह राग तो आएगा नहीं। वैसे ही सब जीव अपने आत्मा का अनुभव करो इस राग से भी वो छुटती नहीं है। लेकिन उस दिव्य ध्वनि में तो ये बात निश्चित रूप से है कि जो सुनकर जीव अपना कल्याण करे और अपने में स्वयं में भगवानत्व कहो या भगवानपना प्रकट करें, इस कारण से वो दिव्य ध्वनि छूटती है। भगवान ने दिव्य ध्वनि मा तो एम आयु के परजीव ने तू हनी शक्तोज नथी, के परजीवनी तू रक्षापन करी शक्तोज नथी, तथा परजीवनी रक्षा करवाना जे भाव थाय छे ए राग छे, अने राग छे ते खरेखर तो पोताना आत्मानी हिंसा करनारो परिणाम छे। देखो अभी इस पर से एक बात मुझे याद आ गई, हम अभी गए थे ना यूएसए में, वहां हर जगह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता ऐसा बोले तो आधा हॉल खाली हो जाए, ख्याल में? तो अब क्या करें, समझाना तो उनको है। तो जब मैंने वहां पर जो सब बातें जब ली थी, पहले द्रव्य गुण पर्याय में तो इस तरह से उनको समझाया कि प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता कैसी है, स्वतंत्रता कैसी है। फिर अभी एक दिन बाकी है, दो दिन बाकी है, शुरू हो गया तो फिर धमाधम धुलाई करके छोड़ दी। अभी बोलने को जगह नहीं ना। और उसमें क्या हो गया था कि उज्ज्वला ने चार अभाव का भी विषय लिया था। अब चार अभाव होता है तो दो द्रव्य में तो अत्यंत अभाव है, तो अभी ये इसका उसमें अभाव है तो ये उसका कार्य कहां से करेगा। फिर ऐसी आंखें ऊपर जाए सबकी, बहुत मजा। यहां यही बात समझा रहे, मैं खाली वहां की बात नहीं समझा रहा। देखो देखो क्या कहते हैं, यहां तो कोई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि इसलिए छुटी क्यों के बीजा जीवनी रक्षा करवा माटे। यहां तो स्वामी जी कह रहे इसलिए नहीं दिव्य ध्वनि छुटी, तू बीजा जीवनी रक्षा करी शक्तोज नथी। मूल बात ही समझ लो पहले। अरे ऐसा समझेगा तब भी तेरे में परजीवों की हिंसा से तू बचे ऐसा तेरा भाव आएगा, कि जब तू जानता है कि मैं उसकी हिंसा भी नहीं कर सकता हूं ना मैं उसको बचा भी नहीं सकता हूं, ऐसा जानते हुए भी उसके प्रति दया का भाव आए बिना नहीं रहेगा, ऐसी वस्तु स्थिति है। लेकिन हम तो वस्तु स्वरूप को न जानते हुए, ना ना भाई बचाओ तो जोइए भाई, तमें खबर नहीं आपड़े जैन छे हो, आपड़ा थी हिंसा न कराय, ऐसा एकदम मीठा मीठा बात करे। अरे भाई पन जो बोले ना तुम, अरे तू नहीं कर सकते, जा रवा दे बैठो बैठो। देखो स्वामी जी ने कितने तीन लाइन में तीन बातें बताई है। देखो देखो, कोई एम माने के बीजा जीव ने रक्षा करवा माटे, बीजा जीव ने उसका ही अर्थ के बीजा जीव ने न हणवा माटे, न हणवा माटे, ये समझ गए ना? हाँ, अपने मराठी में भी कहते ना हण हण, वो न हणवा माटे। हाँ, भगवान ने दिव्य ध्वनि छूटे बराबर नहीं, ये पहला ही शॉक लगाया। फिर भगवान ने तो आत्मानी पूर्ण आनंद ने अने वितरागी शांति ने दशा प्रकट करवा माटे वाणी में कहूं छे, ये एस्टेब्लिश किया। फिर कहते भगवान नी दिव्य ध्वनि में तो एम आयु के परजीव ने तू हणी शक्तोज नथी, खलास, के परजीव नी तू रक्षापन करी शक्तोज नथी। यानी लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम उसको मार सकते हैं, लेकिन अपने को मारना अच्छा नहीं है। क्यों? कि हम जैन कुल में जन्मे हैं ना, तो जैन कुल में जन्मे हैं तो कैसा यह अच्छा, अपने कुल को नहीं शोभा देता है। अरे ऐसी बात नहीं है, तू मार ही नहीं सकता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहां। तो कह रहे परजीवनी रक्षा करवाना जे भाव थाय छे ए राग छे। अभी वो उसको धर्म मानते हैं ना, तो उसको उनको कह दे कि ये राग छे, अने राग छे ते खरेखर तो पोतानी आत्मानी हिंसा करनारो परिणाम छे। तो वहां पर भी हिंसा तो रितसर चल ही रही है। वास्तव में तो ऐसा होता है कि अभी हमारे जो अंग्रेज लोग आए थे ना, वो भी कह रहे थे कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो यहां तो हम परजीवों की दया पालते पालते स्वहिंसा कर रहे हैं, और तू जब स्वदया पालेगा तो तेरी भी हिंसा नहीं होगी और परजीव की भी हिंसा नहीं होगी। क्यों? कि जब तू स्व में एकाग्र है, उसी में तल्लीन है, लवलीन है, और तू तेरे अन्य परिणाम ऐसे होंगे नहीं कि जाके उसको मारे, उसको बचावे, क्योंकि पूरा पूरा तू अपने में ही एकाग्र है। इसलिए तू स्वदया पालता है तो परदया ऑटोमेटिकली पल जाती है। ख्याल में तो यहां क्या समझा रहे हैं कि राग छे ते खरेखर पोताना आत्मा ની હિંસા કરનારો પરિણામ છે, પરજીવની દયા પાળવાનો ભાવ રાગ છે, તેથી તે સ્વરૂપની હિંસા કરનારો છે। પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં અમૃતચંદ્રાચાર્યે રાગાદિના પ્રાદુર્ભાવની હિંસા કહી છે। એ ક્યા અર્થ હૈ? રાગાદિના પ્રાદુર્ભાવની પ્રાદુર્ભાવને હિંસા કહી છે, યાને એસા કહે રહે હૈ વહાં પર કે જીવ મે યા રાજ્ય કિસી આત્મા મે રાગાદિ કા ઉત્પન્ન હોના, એ પ્રાદુર્ભાવ યાને વહાં ઉસકી ઉત્પત્તિ હોના, યહી હિંસા હૈ। કિસકી હિંસા? સ્વ હિંસા। ક્યા કહા? કે આચાર્ય અમૃતચંદ્રાચાર્યે રાગાદિના પ્રાદુર્ભાવને યાને રાગ કી ઉત્પત્તિ હોના ઇસી કો હિંસા કહા હૈ, અને રાગાદિના અપ્રાદુર્ભાવને અહિંસા કહી છે। યાને વો રાગ ઉત્પન્ન હી નહીં હોના, યહી અહિંસા હૈ। અભી યે હિંસા ઔર અહિંસા કા ઇતના સૂક્ષ્મ વિવેચન કૌન જાનતા હૈ? હમને તો એસા હી આજ તક સીખા હૈ કે પરજીવ કો મારના યહ હિંસા હૈ, ઔર ઉનકો નહીં મારના યહ અહિંસા હૈ। બસ ये स्थूल बात है बहुत, लेकिन यहां तो समझा रहे हैं कि राग की उत्पत्ति होना वही हिंसा है। फिर आगे कार्य होवे या नहीं होवे, ये राग याने काहे का? मारने का राग नहीं, बचाने का राग भी तो राग है। ख्याल में आया? तो ये कितना शॉर्ट है, रागादि का प्रादुर्भाव उसको ही हिंसा कहा, और अप्रादुर्भाव यानी तुझे कोई राग द्वेष के परिणाम ही नहीं हो रहे, शुद्ध परिणाम तेरे चल रहे हैं, वहां तो कोई हिंसा ही नहीं है, ऐसा समझा रहे। अने रागादिना अप्रादुर्भाव ने अहिंसा कही छे, आवो धोध मार्ग छे, यानी ये राजमार्ग है, ऐसा ही है ना, धोध मार्ग यानी उच्च मार्ग। अच्छा, मुख्य मार्ग, ठीक, हाँ हाँ, ए धोध मार्ग ने केनारू वितराग सर्वज्ञ देवनु वचन छे, ते आगम छे, ते आगम मा राग ने जड़ स्वभाव अजीव कहो छे, ते जीव ने लाभ केम करे, जीव ने जीवनो स्वभाव लाभ करे, पन रागादि कदी लाभ न करे। अभी देखो, ये हमने देखा ना, तो इसके जरा रेफरेंस के लिए यही पेज पर ऊपर से दूसरा जो पैराग्राफ है, यानी फर्स्ट सातवीं लाइन समझ लो, एक दो तीन चार पांच छठी लाइन, आई कहे छे, ये किसका उत्तर चल रहा है अभी हमने जो देखा? हाँ, तो क्या कह रहे हैं देखो, शुभ भाव ती आत्मा ने लाभ था धर्म था एवा शुभ भाव ने जीव के नारा परमार्थवादी नथी। अब उनमें क्या कह रहे, कारण के आगम युक्ति अने स्वानुभव थी तेमनो पक्षवादी छे, यानी ये आगम का हम रेफरेंस लेते हैं तो ये जो बात कह रहे वो गलत साबित होती है। युक्ति से हम उसके तरफ देखते हैं, न्याय से, तब भी वो बात गलत साबित होती है, और स्वानुभव जब कोई करता है तब भी उसको पता लगता है कि राग से धर्म नहीं होता। अब उसी बात का एक्सप्लेनेशन हो रहा था, अब हवे आ नीचे प्रमाणे स्वानुभव गर्भित युक्ति छे, यानी युक्ति यानी न्याय है, वो भी कैसा, स्वानुभव से युक्त ऐसा जो है, गर्भित यानी उससे भरा हुआ, स्वयमेव उत्पन्न थयेला एवा राग द्वेष वडे मलिन अध्यवसान छे, ते जीव नथी कारण के कालिमा एटले काळपथी जुदा सुवर्णनी जेम, एवा अद्यवसान थी जुदो अन्य चित स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों वड़े स्वयं उपलब्ध्यमान छे, अर्थात ते वो प्रत्यक्ष चैतन्य भाव ने जुदो अनुभवे छे। यहाँ यही बता रहे कि जो आत्मानुभवी जीव है, उनको जो आत्मा अनुभव में आया है, वह आत्मा शुद्ध ही है। कैसा है? जो काली माँ से भी जुदा जैसा सुवर्ण रहता है, शुद्ध शुद्ध, वैसा आत्मा भी राग द्वेष के द्वारा जो मलिन हुआ है, अध्यवसान से जो मलिन हुआ है, ऐसे आत्मा से जुदा ऐसा चित्त स्वरूप आत्मा वेद ज्ञानियों के ज्ञान में आता है। पेज नंबर 24। अज्ञान एम कहे छे के काळपथी जुदो कोई कोळसो नथी, तेम अध्यवसान थी जुदो आत्मा नथी। क्योंकि उन्होंने आत्मा का कभी अनुभव ही नहीं किया, इसलिए तो अज्ञानी कहने में आ रहे। और वो अज्ञानी कहते हैं कि जिस तरह हमने तो आज तक जिंदगी में ऐसा कोई कोयला देखा ही नहीं है कि जो काला न हो, वैसे आज तक हमने ऐसा कोई आत्मा देखा ही नहीं है कि जो अध्यवसान से जुदा हो, वो अध्यवसान स्वरूप ही है, ऐसा अज्ञानी का मानना है। तो उसकी बात यहाँ हटा रहे हैं, जुटला रहे हैं। क्या कहते फिर से? अज्ञानी एम कहे छे के काळपथी जुदो कोई कोळसो नथी, तेम अध्यवसान थी जुदो आत्मा नथी। ख्याल में? तेने युक्ति थी उत्तर आपे छे के काळपथी भिन्न जेम सुवर्ण छे, तेम अध्यवसान थी भिन्न अन्य चित्त स्वभाव में आत्मा छे। भिन्न कहो या ये दूसरा जो चित्त स्वभाव में आत्मा है, वो अध्यवसान से अलग है। सोनामा जे काळप देखाय छे, एनाथी सोनू भिन्न छे। जे काळप छे ते सोनू नथी, पण मेल छे। तेम पर्यायमा जे पुण्य पापना भाव छे, ते आत्मा नथी, ये तो मेल छे। आ प्रमाणे काळपथी भिन्न सुवर्णनी जेम अध्यवसानथी भिन्न चित्त स्वभावमय जीव छे, एम युक्ति कही। अभी यहाँ तो हम न्याय जिसको हम कहते हैं ना, न्याय यानी लॉजिक जिसको आप कहो, तर्क कहो, यानी युक्ति, यानी वो ऐसी युक्ति वो, या श्री कृष्ण ने चार युक्ति की बातें बताई, वो वाली नहीं। गीता में बता देना सांगीन युक्ति चार गोष्ठी चार, यानी मैं आपको युक्ति यानी कोई ट्रिक ऐसी कोई खास बात बताऊंगा, वो तो उनकी तो बात अलग है। वो युक्ति उसको कहते, वो युक्ति यहाँ नहीं। ये युक्ति का अर्थ यहाँ तर्क कह सकते हो आप, यानी लॉजिक कह सकते हो, या तो न्याय। हर जगह न्याय यानी लॉजिक से ही बात सिद्ध होती है ना, लेकिन वो भी फैलसिकल लॉजिक नहीं। फैलसिकल लॉजिक यानी नहीं समझे? फैलसी यानी खोटा, और खोटे सहित जो लॉजिक होता है, यानी क्या कहते हैं, गधे को कितने पैर होते हैं दीपेश भाई, जानते हैं आप? गधे को कितने पैर होते हैं? चार। और आदमी को कितने होते हैं? दो। दैट्स वाई आदमी इज आधा गधा, ऐसा इसको फैलसिकल लॉजिक कहते हैं। इसको दूसरा शब्द है माल लॉजिक, माल यानी खोटा, कुतर्क जिसको हम कहेंगे। ऐसा ये युक्ति नहीं है, ये तो जो साची है साची जिसको चलो अभी तीसरी बात हवे अनुभवनी बात कहे छे कि वेद ज्ञान करनाराओ ने राग थी एटले अध्यवसान थी जुदो जीव स्वयं उपलब्ध्यमान छे। उपलब्ध्यमान यानी उनको उपलब्ध हुआ है, क्यों उपलब्ध होने योग्य है ऐसा ले। अखंड एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा ने वेद ज्ञानियों अध्यवसान्ति भिन्न प्रत्यक्ष जुदो अनुभवे छे। अध्यवसान्ति जुदो एटले एना आश्रय ने अवलंबन विना पोते पोता तीज प्राप्त थाय छे, અનુભવમાં આવે છે. અહો, શું અદ્ભુત ટીકા છે! આને સિદ્ધાંત અને આગમ કહેવાય. એકલું ન્યાયથી ભરેલું છે. કહે છે કે રાગનું લક્ષ્ય છોડીને સ્વભાવ પ્રતિ દૃષ્ટિ કરતા ભેદજ્ઞાની સમકિતિઓને રાગથી ભિન્નચિત સ્વભાવમય જીવ અનુભવમાં આવે છે. જો અહીં આગમ યુક્તિ અને અનુભવથી એમ સિદ્ધ કર્યું કે આ અધ્યવસાનાદિ ભાવો જીવ નથી, પરંતુ એમનાથી ભિન્ન શુદ્ધ ચૈતન્યમય વસ્તુ જીવ છે. આવી વાત બીજે ક્યાંય છે નહીં, બીજે ક્યાંય છે નહીં અને અન્ય મતી મેં એ વાત કભી આતી નહીં હૈ. વસ્તુને સિદ્ધ કરવા કેટ કેટલો ન્યાય આપ્યો છે. ક્યાં કહા સાહેબ, ન્યાય બતાવ્યા નહીં. ઇન્દ્રિયો અને રાગના આશ્રય વિના વેદજ્ઞાનીઓને સ્વયં શુદ્ધ જીવ વસ્તુ અનુભવમાં આવે છે, પોતે પોતાથી જ અનુભવમાં આવે છે. વ્યવહાર સાધન અને નિશ્ચય સાધ્ય એમ જ્યાં કહેલું છે ત્યાં એ નિમિત્ત બતાવવા વ્યવહાર નહીંથી કથન કરેલું છે. ભાઈ યાને દેખો દેખો, અભી હમ એસા કહેતે ના, જિસકો જિસકો સમ્યક દર્શન હોતા હૈ ઉસકો ઉસકો સચ્ચે દેવગુરુ શાસ્ત્ર કી શ્રદ્ધા હોતી હૈ. યાને દેવગુરુ શાસ્ત્ર હી વહાં હોતે હૈ તો દેવગુરુ શાસ્ત્ર તો ઉસે કોઈ સમ્યક શ્રદ્ધા નહીં કરાતે. કરતા તો સ્વયં હૈ લેકિન ઉનકે ઉપર આરોપ આતા હૈ કે ઇનકે કારણથી યે હુઆ, ક્યોંકિ ઉસમેં દેશના ભી હૈ ના, તો દેશના તો સમ્યક દૃષ્ટિ કી હોગી. તો વૈસા વ્યવહાર નહીંથી કથન કરેલું છે, યે જો બાત હૈ ના વો ઇસ તરહ સે હમ સમજ સકતે હૈ. ભાઈ વસ્તુ તો રાગાદિથી ભિન્ન ત્રિકાળ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવમય છે અને તે તેની સન્મુખતા અનુભવમાં આવે છે. દેખો યહાં અપને સ્વભાવ કા બહોત સુંદર વર્ણન ક્યા હૈ. વસ્તુ યાને દ્રવ્ય, વસ્તુ યાને મેં સ્વયં આત્મા, એસા લે લો. હા, તો કહેતે હૈ વસ્તુ તો રાગાદિથી ભિન્ન કભી ત્રિકાળ ઓર કૈસે હૈ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવમય છે. યાને વો રાગાદિથી ભિન્ન હૈ ઓર ત્રિકાળ એસા હી ઉસકા સ્વભાવ હૈ. એક વાત, વસ્તુ ભી ત્રિકાળ હૈ ઓર કૈસી હૈ શુદ્ધ હૈ ઓર ચૈતન્ય સ્વભાવમય હૈ. ઓર એસે આત્મા કે સન્મુખ હોને સે વો જો અનુભવ હોતા હૈ વહ ધર્મ હૈ, વહ જો હૈ વહ સમ્યક દર્શન હૈ. અભી યહાં તો વો બતા રહે કે વો લોગ જો માનતે હૈ વો ગલત હૈ ઓર ઇસ તરહ સે જો અનુભવ મેં આ રહા હૈ વો બાત સાચી હૈ. સ્વસન્મુખતાનો અભ્યાસ ન હોવાથી આ વાત કઠણ લાગે છે. અનાદિથી, અભી ઉસકા કારણ ક્યાં હૈ, અનાદિથી પરતરફ વલન જઈ રહ્યું છે અને અંતર્મુખ વાળવું અને એને સોરી કોને કે પરતરફ જે વલન છે એ વલન એટલે એ જ્ઞાનોપયોગ એને અંતર્મુખ વાળવો એ જ પુરુષાર્થ છે. જે પર્યાય રાગાદી ઉપર ઢળેલી છે એને તો કાંઈ અંદર વાળી શકાય નહીં. ક્યું? હા બ્રહ્મ, એ જો લિખા હૈ પર્યાય રાગાદી ઉપર ઢળેલી છે એને તો કાંઈ અંદર વાળી શકાય નહીં. કોણ કહેગા? ઉન્હોને ક્યા કહા? સુનના સુનના, આપ આપ બરાબર નહીં બતા રહે બેન. કિધર ગયા? દેખો ક્યા કહે રહે, જે પર્યાય રાગાદી ઉપર ઢળેલી છે એને તો કઈ અંદર વાળી શકાય નહીં. હા, આપ કહેવા માંગો છો? હા 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 ના પણ અહીંયા તો શું લખે છે કે જે પર્યાય દ્રાગાદી, હા દેર યુ આર, ક્યાં કહે છે શું મમ્મી બતાવું બતાવું સમજાવું અભી દેખો યે સેકન્ડ લાઈન આપકે પાસ પુસ્તક હૈ ના હા તો ક્યાં લિખા હૈ સુનો ભૈયા કે જે પર્યાય રાગાદી ઉપર ઢળેલી છે અભી એને એટલે તે જ પર્યાયને તો કાંઈ અંદર વાળી શકાય નહીં ક્યુકે પર્યાય તો એક સમય કે વો ઓલરેડી ઉધર જન્મી હૈ ઓર ઉધર હી ચિટકી હૈ અભી વો ઉસકો યહાં લાવે તબ તક તો દૂસરી પર્યાય આ જાયેગી બાત ખ્યાલ મેં આ ગઈ ઓર આપ જો કહે રહે કે ઉધર હૈ ઉધર હૈ ઉધર હૈ હા હૈ ના વહી તો બતા રહે દેખો ફિર સે જે પર્યાય હા રાગાદી ઉપર ઢળેલી છે યાને ઉસકા કાર્ય હો ગયા રાગાદી કે તરફ જાના હો ગયા હવે એને તો કાંઈ અંદર વાળી શકાય નહીં પણ જ્યાં દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાય છે ત્યાં તે જ ક્ષણે પર્યાય સ્વયં અંતરમાં ઢળેલી હોય છે ત્યારે તેને અંતરમાં વાળી એમ કહેવાય છે અભી આગે અહીં ટીકામાં સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થયેલા એવા રાગ દ્વેષ એમ કહ્યું છે ત્યાં એમ અભિપ્રાય છે કે તેવો એટલે રાગ દ્વેષ આત્માથી ઉત્પન્ન થયા નથી યહાં ક્યા બતાયા સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થયેલા એવા રાગ દ્વેષ તો રાગ દ્વેષ આત્માને ઉત્પન્ન નહીં કીએ અપને આપ ઉત્પન્ન હુએ હૈ ઓર હમ તો માનતે કે નહીં નહીં સોચ સોચ કર હમકો શુભભાવ કરના પડેગા યા કરના ચાહીએ યહાં કહેતે સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થયેલા એવા રાગ દ્વેષ આ ભેદ જ્ઞાનીઓ વડે સ્વયં ઉપલભ્યમાન છે એમ કહીને એમ બતાવવું છે કે આત્માનો અનુભવ કરવામાં અન્ય રાગ ઇન્દ્રિયો આદિ કોઈની અપેક્ષા નથી આત્મા પોતે પોતાથી જ અનુભવમાં આવે છે ભાઈ આવા યથાર્થ સ્વરૂપનો પ્રથમ નિર્ણય તો કર વસ્તુ આવી સહજ શુદ્ધ ચિત્ત સ્વભાવમય છે એવો વિકલ્પ સહિતના જ્ઞાનમાં નિર્ણય તો કર શ્રી સમયસાર ગાથા 144માં આ નિર્ણયની વાત લીધી છે શું નિર્ણયની વાત લીધી છે ભગવાને કહેલા આગમથી પ્રથમ નિર્ણય કરે કે આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે દેખો ભાઈ અભી જરા હાથ ઉઠાના હો કિસકો કિસકો આત્માનુભવ કરના હૈ એક ભી હાથ નહીં ઉઠા રહે મુજે મુજે વો કથા યાદ આઈ ક્યા એક રાજા થા યે આપને કભી નહીં સુની હૈ ઉસને બોલા કે આપને રાજ્ય મેં સબસે આલસુ કોઈ હોગા ઉસકો હમ પહેલા બક્ષિશ દેંગે તો સબ અપને સેવકો કો નોકરો કો ભેજા ઇધર ભેજો ઉધર ભેજો કોઈ એસા એક સાત દિન નહીં નાયા હૈ કુછ એસા કુછ 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 તો એક આદમી ઝાડ કે નીચે સોયા હુઆ થા ઇતને દિન સે સોયા હુઆ થા કે ઉસકી બહોત દાઢી મૂછે બઢ ગઈ થી તો બોલે કબ સે તું યહાં હૈ તો બોલતા મેં બહોત દિનો સે હું જો ભી બતાયા તો બોલા કે યાર યે સબસે યે હોના ચાહીએ આલસુ આદમી તો બોલતા નહીં નહીં ચલ તુજે કો રાજાને બુલાયા હૈ કે તેરે કો બક્ષિશ દેના હૈ તો બોલતા નહીં મેં નહીં આઉંગા મેં તો યહી રહુંગા અભી હમ નહીં હમ રાજા કો બોલેંગે કે તુમ એસા એસા તો કહેતા હૈ ભાઈ આપ જાતે હો તો જાઓ લેકિન વો મેરે મૂછ મેં અટકા હુઆ બોર જો હૈ બોર કે નીચે બોર ઝાડ કે નીચે બેઠા થા ના વો મેરે મુંહ મેં ડાલ કે જાના બોલતા હૈ વૈસા મેં કહા કિસકો આત્માનુભવ કરના હૈ તો હમ તો સપ્તમ ગુણસ્થાન મેં થે અનુભવ મેં હી થે તો વહાં કરને કા સવાલ કિધર રહેતા દેખો યહાં વિધિ બતાઈએ હો યે 144 નંબર કી ગાથા અભી બતા રહે હૈ વો આગે ભી આને વાલી હૈ લેકિન યહાં આત્મા કા અનુભવ કૈસા હો સકતા હૈ હમકો તો બાર બાર પ્રશ્ન તો પડતા હૈ કે ભાઈ આત્મા કા અનુભવ કૈસા કરના કે આપને ક્યાં કિયા થા આપ ક્યાં ક્યાં કરતે હૈ એસા લોગ પૂછતે અરે શાસ્ત્ર પઢ તો તેરે કો સમજ મેં આયેગા ના દેખો ભગવાને કહેલા આગમથી કોને કહેલા हाँ अन्य कोई नहीं चलेगा, जिनेंद्र भगवान चाहिए। प्रथम निर्णय करो है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप जो छे, ये कभी हमने माना है क्या कि ज्ञानात्मक दर्शन भूत वगैरह याद तो किया है पांच, लेकिन मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अन्य का कुछ नहीं करता, सिर्फ अन्य को जान सकता हूं, स्व को भी जान सकता हूं, लेकिन अन्य जो है वह मेरे ज्ञान के गेय है, मैं उनका ज्ञाता हूं और वो मेरे गेय है, ये न मानते हुए वे मेरे कर्म है और मैं उनका करता हूं, वे मेरे कार्य है। हाँ, हमने प्रतिभाताई से पूछा, बहन क्यों नहीं आई थी कल? कल बहुत काम था साहब। क्या था? हमारे घर में बच्चों को सिखाने का काम था। तो अरे भाई तू तो ज्ञाता दृष्टा है। नहीं नहीं, अरे उनको सिखाए बगैर थोड़ी पास होंगे वो। तो हमने तो स्वयं को कर्ता ही माना है, समझ गए? मैं ये समझाना चाहता हूं कि हमने कर्ता बुद्धि आज तक छोड़ी नहीं है, इसलिए आत्मानुभव नहीं हुआ। क्या नहीं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये किए बगैर नहीं होगा, ये जो बात है ना। तो पहले मैं पहले क्या किया, भगवाने कहेला आगम थी, प्रथम निर्णय करे के आत्मा ज्ञान स्वरूप ज छे, त्यार पछी, ये स्टेप बाय स्टेप। मति ज्ञान ने श्रुत ज्ञान ने मर्यादा मा लावी आत्म सन्मुख करे। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ने, उनको नाम छोड़ दो, ये जो ज्ञानोपयोग है हमारा वो क्या करता है कि इसको जानो उसको जानो उसको जानो, उसी में अटका हुआ है। हाँ, तो उसको मर्यादा में लाकर, मर्यादा में यानी वो जो बहुत हमारा मन भटक रहा है समझ लो, तो बोलते हैं अरे मन जरा स्थिर कर, वैसा हमारा उपयोग जो है वो अन्य अन्य बातों को समझने में जानने में लगा हुआ है। इसलिए देखो, मैंने तो ऐसे बहुत लोगों को देखा है, अभी अमेरिका में भी ऐसा मैंने देखा, वो आज साहब आप वो क्यों नहीं आए आज, वो आप तो जानते हैं हम थोड़े दिन के लिए है स्वाध्याय में तो आना चाहिए। नहीं साहब, वो क्या है कि हमारा लड़का है ना, उसकी 4 साल की लड़की है। तो क्या हुआ, वो लड़की को हम डांस क्लास में लेके गए, उसको तो हर फला दिन लेके जाना पड़ता है, यहाँ तो कोई ऐसा कोई नहीं है तो हमको लेके जाना पड़ा। यानी ये क्या है कि दुनिया की सारी बातें सिखाने में और जानने में यह जीव लगा पड़ा है। अपने को जानना हो तो वो तो बाद में जब टाइम होगा ना तो तुमको सुनने को आएंगे, नहीं तो क्या आपका वो सीढ़ी आता है ना वो हम पढ़ लेंगे। ये आप लखन देखो इनके, जो आया हुआ है उसको सुने नहीं और सीढ़ी सुने क्या? तो यहाँ कहते मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ने मर्यादा मलावी, यानी वो ज्ञानोपयोग जो हमारा इधर उधर 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 जो भटक रहा है उसको मर्यादा में यानी अपने स्वरूप लाकर क्या करना साहब, आत्म सन्मुख करे। आगे बताते हैं, ज्ञान जे पर तरफ ढड़ेलू छे तेने स्व तरफ वाड़े। ये जो यहाँ लिखा है ना, मति ज्ञान ने श्रुत ज्ञान ने मर्यादा में लावी आत्म सन्मुख करे, उसका ही अर्थ क्या है कि ज्ञान जे पर तरफ ढड़ेलू छे तेने स्व तरफ वाड़े छे। त्यारे शू थाय छे, अभी तीसरा पॉइंट, अत्यंत विकल्प रहित थईने, यानी भेद कल्पनाओं से जो अनेक अनेक बातों को जान रहा था ना, तो अत्यंत विकल्प रहित राग द्वेष रहित ऐसा भी ले लो, तत्काल निज रस तीज प्रकट तथा आदि मध्य अंतर रहित अनाकुल केवल एक आखाय विश्वना ऊपर जाने के तरतो होए तेम अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्म रूप समय सार ने आत्मा अनुभवे छे। यानी ऐसा जब होगा तब क्या होगा कि विकल्प रहित, यानी यहां समझ लेना कि भाई कोई भी कषाय रहित होकर, राग रहित होकर, या जो भेद में जो अटका हुआ था वो अभेद में आकर विकल्प रहित थईने, तब क्या होगा, तत्काल निज रस्ती प्रकट थता। कौन के आदि मध्य अंत रहित ऐसा जो आत्मा है, ऐसा अनाकुल है और केवल एक ऐसा जो आत्मा, जो आखाई विश्वना ऊपर जाने के तरतो होए। अभी यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ हमें जो बातों में सबसे श्रेष्ठ लगे ऐसा वह आत्मा जब हो जाए तो वह आखा विश्वना ऊपर तरतो छेम लागे। ऐसा नहीं समझना कि बाकी सब हल्की चीज और वो, ये तो हम जिसको कहते हैं कि अटमोस्ट जिस जो हमें इम्पोर्टेंट लगे, यानी सब वस्तुओं से भी जिसकी महानता अधिकता लगे, उसका अर्थ ये है कि आकाय विश्वना ऊपर जाने के तरतो है। ये जो बात है ना, तेम अखंड यानी जो विकल्प रहित कहा ना, वो अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन, विज्ञान घन यानी ज्ञान स्वरूप परमात्म रूप समय सार ने, ऐसा जो आत्मा है एने आत्मा अनुभवे छे, यानी ये पर्याय वाला आत्मा अनुभवे छे। अभी तो अपनी 44 नंबर की गाथा चल रही, 100 गाथा के बाद ये बात दोबारा आएगी। अब कहते हैं रागति भिन्न आत्मा ने अनुभवे नहीं, अने राग वड़े लाभ एटले धर्म माने, ते बाहर थी कंचन कामिनी नो त्यागी निर्वस्त्र दिगंबर अवस्था धारी होए, तो पन तेने साधु केम कहिए। क्या कह रहे हैं यहां तो स्वामी जी? कभी कभी ऐसा कहते हैं कि जब तक राग से नग्न नहीं होता है, यानी कषायों से नग्न नहीं होता है, यानी उससे रहित नहीं होता है, तब तक बाह्य में नग्न अवस्था भी धारण करे तो एनाती शू वड़ियू। इनका ये कहना है कि बाह्य वस्त्र छोड़ दिए तो वेशधारी नग्नता जो है वो कुछ काम की नहीं है। यहाँ राग द्वेष से नग्नता चाहिए, भिन्नता चाहिए, उससे मैं उस रूप नहीं हूं ऐसी मान्यता चाहिए। इसलिए कहते हैं राग थी भिन्न आत्मा ने अनुभवे नहीं, पहली गलती। दूसरी क्या, अने राग वड़े धर्म माने लाभ माने, ते बार थी कंचन कामिनी नो त्यागी, कंचन यानी पैसा धन संपत्ति, अरे भाई एक गोल्ड तो शब्दशः अर्थ हो गया। हाँ अभी कंचन कहने से कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का भी नाम नहीं है, ये कंचन का अर्थ धन दौलत समझना। अभी जिसके पास कंचन नहीं है, सिर्फ 2-5 रुपया है और उसने वो छोड़ दिया और मुनि हुआ, तो उसको मुनि नहीं कहेंगे कि अरे उसने कंचन को किधर छोड़ा, उसके पास सोना ही नहीं था। ऐसा शब्दशः अर्थ मत लेना। और कामिनी का अर्थ स्त्री लेना, ख्याल में आया? मैं गुजराती नहीं जानता हूं, मतलब कभी बराबर है बेटा, कंचन का अर्थ ही सोना होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग, जो परिग्रह है। अभी सबसे भारी कौन है? सोना ही है ना, इसलिए क्या कहते हैं उसको, एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा उसको वर्ड को रखा, कंचन और कामिनी। अभी किसकी काली कलूटी बीवी होगी और उससे वो मोहब्बत करता होगा तो वो कामिनी थोड़ी होगी, यानी जो सुंदर स्त्री है उसको कामिनी कहेंगे, जो काम की वासना को उद्दीपित करे उसको कामिनी कहेंगे। अब गोपाल दास जी बरिया की स्टोरी जानते हैं हम? सुनो, गोपाल दास जी बरिया ने जिन्होंने ये सिद्धांत प्रवेशिका के जो मूल लेखक है, वो लेखक बेखक नहीं है, वो जैसा सिखाते थे तो उनके साथ बहुत लोग आके बैठते थे, तो उनके साथ में एक उर्दू लिख समझने वाला, उर्दू लिखने वाला मुसलमान बैठता था, तो वो जब सिखाते थे तो वहां लिख के रखता था, और वो उर्दू में लिखा हुआ जो है क्या, वो बाद में उन्होंने फिर इकट्ठा किया और उसके हम सिद्धांत प्रवेशिका बनवाई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो क्या नाम है, समयसार नाटक, नाटक समयसार, वो उर्दू में लिखा हुआ है मूल, पंडित बनारसी दास जी ने। उसकी जेरोस का भी अभी मिल देखने को मिलती है। कहाँ गए थे हम? बनारस में। तो मैं ये कहना, हाँ आगरा में देखा, आगरा में देखा था। मेरा ये कहना, ये गोपालदास जी बरैया जिन्होंने सिद्धांत प्रवेशिका लिखी है, वे रोजाना प्रवचन करने जाते थे, और रोजाना प्रवचन करने जाते थे तो उनकी जो स्त्री थी वो इतनी झगड़ालू थी क्या के पूछो मत ही, और दिखने में तो कुछ पूछो ही नहीं ऐसी थी। तो वो रोजाना उसके लिए प्रवचन में आके बैठने के पहले हुक्का जला के आते थे, यानी वो स्वयं जो हुक्का पीती थी हा? तो वो एक दफे ऐसे ही आ गए भूल के, तो वहां आके बहुत बड़बड़ाने लगी, झगड़ा करने लगी। तो चुपचाप खड़े हुए, घर में जाके हुक्का जला के आए। तो फिर उन लोगों ने कहा, क्या पंडित जी आप ऐसा है, स्त्री के ऐसा 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 चलती, ये कैसी स्त्री है तुम्हारी? तो वो कहती, वह मेरे लिए महान उपकारी है। हा? क्यों के उसको देखते ही मुझे वैराग्य आता है। अब बोलो, ये छपा हुआ है हो? ऐसा मैं अपने घर की बात नहीं बोलता हूं। हाँ, तो उसको भी कामी नहीं कहेंगे, अपनी बात कौन सी चल रही थी? कंचन और कामिनी। ये कंचन ये रिप्रेजेंटिंग सर्टन बातों को ये बताते हैं। तो क्या कह रहे थे, ऐसा हो गया, राग थी भिन्न आत्मा ने अनुभवे नए, अने राग वड़े लाभ अने धर्म माने, ते भारती कंचन कामिनी नो त्यागी, निर्वस्त्र दिगंबर अवस्थाधारी होय, तोपन तेने साधु केम कहिए। ये आपका आगम की एक बात बताता हूँ पिनांग भाई, मुझे भी आज क्या मालूम, अपने क्या नाम है, पुष्पा बेन का जगह तुमने लिया, अच्छा है। हाँ, स्टोरी कहने के लिए बात ऐसी हुई, एक मुनि थे और वो बहुत मतलब अंतरंग में लीनता वगैरह बहुत अच्छे भावलिंगी मुनि थे। तो उनके संग में एक दूसरा कोई मुनि हो गया, जवान था, तो वह भी अपने स्त्री को छोड़ के यहाँ आया। तो फिर उन्होंने उसके मन में उसका मन पलट गया और वो सोचने लगा कि उसे अपने बीवी की बहुत याद आने लगी, और मन ही मन ऐसा सोचने लगा कि मैं अपने स्त्री को मिलने जाऊं। तो ये किसी भी प्रकार से वह बात उनके कान पे आई जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, वो जो मुनि अच्छे थे वो। तो उन्होंने कहा, चलो हम देशांतर करने को जाएंगे। और वो जैसा जाते 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 एक राज्य में गए, तो राज्य में गए तो उनको वहाँ आहार के लिए पड़गाया और वो गए, और वहाँ उनको पता लगा ये राजा की ये तीन रानियाँ या चार रानियाँ जो भी होगी वो उनकी पूर्व मतलब पूर्वाश्रम की रानियाँ थी, और ये राजा था, और वो इतनी सुंदर सुंदर स्त्री होते हुए भी उनको छोड़ के इन्होंने मुनि दीक्षा ली। तो उनको लज्जा आई कि मेरी काली कलूटी कानी बीवी की मुझे इतनी याद आती है और मैं उसके तरफ जाना चाहता हूँ, और ये इनके इतनी सुंदर सुंदर पत्नियाँ होते हुए भी इनको कभी उनकी याद नहीं आती है। तब से वो इतने स्वरूप में एकाग्र हुए कि उनका काम हो जाए। ये पद्मानियों की स्टोरी में आता है हो, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ कामिनी का अर्थ स्त्री लेना, कंचन का अर्थ धन संपत्ति लेना, सोना भी लेना तो लो, हीरा चांदी क्या जो होता है माणक सब लेना, इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग। देखो क्या कह रहे हैं, कंचन कामिनी नो त्यागी, निर्वस्त्र दिगंबर अवस्थाधारी होए, तोपन तेने साधु केम कही है, क्योंकि इनमें जो छोड़, देखो देखो देखो, ये जो बाह्य वस्तुएं हैं ना उनको तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो छुट्टी है, तूने मान रखा है कि ये मेरे हैं मेरे मेरे हैं। ये जो राग है वो राग को छोड़ना है, और राग को छोड़ना ये कहना भी व्यतिरेक है, क्या कहा समझ में? तू नहीं थी ना, कल नहीं थी। विधि विधि और मतलब व्यतिरेक, व्यतिरेक और अन्वय ये बात आती है, लेकिन विधि और व्यतिरेक ऐसा बात, यानी जो निगेटिव नास्ती से कथन करेंगे तो उसको व्यतिरेक कहेंगे। अभी हमारा जो विषय चल रहा है ना, और जिसको अस्थि से कहना है उसको विधि कहेंगे। वहां कभी कभी विधि विधि की जगह अन्वय भी लिया, अन्वय व्यतिरेक ऐसा भी कहा है। यानी हम जिसको कहते हैं ना निगेटिव, जैसा आपको राग छोड़ना चाहिए, यानी अगर आप ऐसा कहो मान लो कि आत्मा में स्पर्श नहीं है, आत्मा में ये राग नहीं है, आत्मा में परवस्तु नहीं है, ये सारा निषेधात्मक जो बात हो रही है, नहीं है नहीं है नहीं है, ये व्यतिरेक कथन है। अरे हाँ साहब, आत्मा में ये नहीं है वो नहीं, वो तो समझो आत्मा में है क्या? तो आत्मा ज्ञानात्मक है, आत्मा दर्शनभूत है, आत्मा महापदार्थ है, अचल है, ये आत्मा के बारे में कह रहे, तो वो विधि हो गई उसकी। मतलब विधि यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव उसके बारे में बता रहे। पहले तो निगेटिव निगेटिव बताई, ख्याल में? तो अभी यहां क्या कह रहे हैं कि राग को छोड़ो, ऐसा जब कह रहे हैं तो राग थोड़ी छूटेगा, जब स्वरूप में एकाग्र हो जाओ तो राग छूटेगा, लेकिन ये पर पदार्थ जो है वह तो छूटे ही है, उसको छोड़ना बोड़ना ये तो कहने की बात है। जैसा हमने तो आलू प्याज खाना छोड़ दिया, ऐसा हम कहते हैं ना, काय का आलू प्याज खाना छोड़ दिया, तू कब खाता था जब तूने छोड़ दिया है? वो खाने के प्रति जो गृद्धता थी, जो आसक्ति थी, वो आसक्ति छूटी, ख्याल में? तब कहेंगे कि हमने ये छोड़ा। अब वो भी आसक्ति छूटी ये तो कहने की बात है, ये वास्तव में तो आत्मा में स्वरूप में लीनता होगी तो आसक्ति छूटी ऐसा कहेंगे, लेकिन अभी तो हम उसके भी नीचे की स्टेज में है मान लो, ख्याल में? तो ये तो कहना बात जुदी है और समझना बात जुदी है। ऐसा होता है क्या कभी? कहना कुछ अलग है और समझना कुछ अलग है। हाँ मम्मी, ऐसा जानती हैं? अभी मान लो हम आपके घर का बेटा कहीं सिनेमा देखने गया, कब गया? सुबह मॉर्निंग शो 9 बजे, फिर फटाफट फटाफट खाना खाया, फिर 12 बजे का दूसरा शो देखा, फिर आया चाय पिया, फिर 3 बजे का शो देखा, फिर 6 बजे का शो देखा, फिर कहाँ गया रे तू? तो मम्मी मैंने आज सुबह से 4 पिक्चर देखे। अरे बहु ढायो छे, जा जा 6 वाग्यानो अने 9 वाग्यानो पिक्चर जोई आऊ। तो ढायो छे तो बच्चा एकदम खुश हो गया, अरे मम्मी को मैं बहुत पसंद आ गया, मेरे को ढायो छे, ऐसा कहता है। हाँ, तो ये कहना कुछ अलग होता है और समझना कुछ अलग होता है, समझ में? तो यहां तो हम कहेंगे कि मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा वो छोड़ा, ये तो कहने की बात है, उसके प्रति जो हमारी आसक्ति थी, राग था, उस राग का हमने त्याग किया, ऐसी बात है। और वह भी कहना सादी बात है, वास्तव में राग को छोड़ना तो जब ही होगा जब स्वरूप में एकाग्रता होगी, ये अगली बात है। अब यहां पर क्या कह रहे, देखो, अवस्थादारी होए तो पन तेने साधु केम कहवाए, राग थी लाभ मानो। यह तो कहां की बात आई, एक मिनट ना, कंचन कामिने ने त्यागी की बात चली थी ना, उस पर से ये बात आई। अब आगे बढ़ते, थर्ड लाइन, राग थी लाभ मानवो ए तो मिथ्या दर्शन छे, आ कोई व्यक्ति विशेष ना अनादरनी वात नथी, पन वस्तुनी स्थितिनी वात छे। हमने घना शास्त्रों नो अभ्यास छे, अमे घनी शास्त्र सभाओ संबोधी छे, तेथी अमने आत्मज्ञान छे, एम कोई कहे तो ते यथार्थ नथी। ए तो बधी रागनी विकल्पनी वातो छे, वस्तु आत्मा तो शास्त्र ज्ञान ना विकल्प थी पार निर्विकल्प छे। ये शास्त्र ज्ञान को भी विकल्प कहा है, क्योंकि शास्त्र को जानना समझना यह भी एक प्रकार का राग है। वस्तु आत्मा तो शास्त्र ज्ञान ना विकल्प थी पार निर्विकल्प छे, आवा निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यमय आत्मा नी दृष्टि करी तेनो अनुभव करवो તે આત્મદર્શન અને આત્મજ્ઞાન છે. આ પ્રમાણે અધ્યવસાનને એટલે રાગાદી વિભાવને જીવ માનનારને આગમ યુક્તિ અને અનુભવથી જૂઠો ઠરાવ્યો. આ એક બોલ થયો. હવે બીજો બોલ કહે છે, અનાદિ જેનો પૂર્વ અવયવ છે અને અનંત જેનો ભવિષ્યનો અવયવ છે, એવી જે એક સંસરણરૂપ ક્રિયા તે રૂપે ક્રીડા કરતું જે કર્મ છે તે પણ જીવ નથી, કારણ કે કર્મથી જુદો અન્ય ચૈતન્ય સ્વભાવરૂપ જીવ વેદજ્ઞાનીઓ વડે સ્વયં ઉપલભ્યમાન છે, અર્થાત તેઓ તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે. હવે યહાં પર યે જો દૂસરી ખોટી માન્યતા વાલે લોગ હૈ ઉનકા ક્યા માનના હૈ, યે કર્મ જો હૈ વો કર્મ સ્વરૂપ હી આત્મા હૈ એસા વહ માનતે હૈ. અભી વો કૈસા બતા રહે દેખો, કેવળી ભગવાન ને કર્મ ને જીવ કહ્યો નથી એ આગમ થયું. યાને તીન બાતો સે હમે સિદ્ધ કરના હૈ ના, કોન સી તીન બાતે, આગમ, દૂસરા યુક્તિ ઓર સ્વાનુભવ, બરોબર. તો યે કેવલી ભગવાન ને એસા કહા હૈ તો વો આગમ હો ગયા. તથા કાળપ થી મેલપ થી જેમ સોનું જુદું છે તેમ કર્મ થી આત્મા જુદો છે એ યુક્તિ થઈ. અને ભેદજ્ઞાનીઓ કર્મથી જુદો જે ચૈતન્ય સ્વભાવી જીવ છે તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે તે અનુભવ થયો. ટીકામાં એમ લીધું છે કે સંસરણરૂપ ક્રિયા એટલે રાગની ક્રિયામાં કર્મ ક્રીડા કરે છે, રાગમાં આત્મા ક્રીડા કરતો નથી. પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય ભાવને જુદો અનુભવે તેને સમ્યક દર્શનાદિ ધર્મ કહીએ. ક્યા કહેતે હૈ? યે જો ચૈતન્ય ભાવ યાને ચૈતન્ય સ્વભાવ જો હૈ ઉસકો અન્ય સર્વ પદાર્થો સે જુદા એસા જો કોઈ અનુભવ હૈ ઉસ ભાવ કો સમ્યક દર્શન કહેને મેં આતા હૈ, ઉસકો હી સમ્યક દર્શનાદિ ધર્મ કહીએ. એ સમ્યક દર્શન વિના બહારથી વ્રતાદિ ધારણ કરી એમ માનવા લાગે કે અમે સંયમી છીએ અને પોતાની ખોટી માન્યતાનું ભારે નુકસાન થાય છે. એની નુકસાનની એને ખબર ન હોય એ તેનું અજ્ઞાન છે. પણ એ અજ્ઞાન કંઈ બચાવનું સાધન હોઈ શકે હોઈ ન શકે. એ ક્યાં કહેના ચાહતે માલુમ હૈ? અજ્ઞાન કાંઈ બચાવનું સાધન હોઈ ન શકે. તો હમ અભી બહુત આસાની સે સમજના હો તો ઇગ્નોરન્સ ઓફ ધ લો ઇઝ નોટ એન એક્સક્યુઝ. વો યહી બાત બતા રહે કે અજ્ઞાન કાંઈ બચાવનું સાધન હોઈ ન શકે. જેમ ઝેરના પીવાથી મરી જવાય તેમ શુભકર્મના સેવનથી પણ આત્માનો ઘાત જ થાય એની ખબર ન હોય તેથી કાંઈ તે આત્મઘાતના નુકસાનથી બચી ન જાય, એને એનું નુકસાન ભોગવવું જ પડે. જો દરેક ઠેકાને એમ લખ્યું છે કે જીવ તો ચૈતન્ય સ્વભાવી જ છે. આહા, ચૈતન્ય સ્વભાવ ભાવ અખંડ એકરૂપ ધ્રુવ સ્વભાવ એવો ને એવો રહેનારો જે ત્રિકાળી જ્ઞાન સ્વભાવ છે તે જીવ છે. એવો જીવ જે રાગથી કર્મથી ભિન્ન છે તેને સમ્યક દ્રષ્ટિઓ પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે. આવો અનુભવ જ્ઞાન અને આનંદના વેદન સહિત હોય છે. પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે એમ કીધું છે ને, એટલે રાગ અને મનના સંબંધથી જાણે અને અનુભવે છે એમ નથી. પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં પરનો આશ્રય છે જ નહીં. परणाश्रय रहित एवं मति श्रुत ज्ञान थी आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव मां वेदन मां आवे छे। अभी यहाँ पर क्या बात बता रहे हैं, देखो जो मति ज्ञान है श्रुत ज्ञान है वह जो पर पदार्थों को देखता जानता है, समझ लो अभी जानता ही की बात लो, देखना का छोड़ दो क्योंकि वो तो दर्शन गुण का कार्य, तो वह तो हमेशा कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान है, यानी मति श्रुत ज्ञान को जानने में इंद्रिया या मन की सहायता होती है, निमित्त होता है। पर यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव मां परणो आश्रय छेज नहीं, यानी यहाँ आत्मा का अनुभव जो है वह अनुभव प्रत्यक्ष है, ये बात समझाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, परणाश्रय रहित एवं मति श्रुत ज्ञान की आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव मां एटले वेदन मां आवे छे, यानी जब जब अपने आत्मा का अनुभव करता है कोई जीव, शुरुआत में जब आत्मा का अनुभव होगा तब उसको परोक्ष ज्ञान होगा या प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, यानी मति श्रुत ज्ञान होगा ना, केवल ज्ञान तो नहीं होगा शुरू में। तो कहते हैं उस समय, क्योंकि ये जब जब पर को देखता है तब ये मन और ये उसके इंद्रिया कार्य निमित्त भूत होती है, लेकिन स्व को जानता है तब वह जो स्व का जो अनुभव है वह अनुभव प्रत्यक्ष है। इसलिए मति श्रुत ज्ञान को कभी कभी प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहने में आता है तो वास्तव में परोक्ष ही, लेकिन वह कब, जब पर को जानता है तब, अनुभव में वह अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए क्या करें, देखो नीचे से दूसरी लाइन, प्रत्यक्ष अनुभव में परणो आश्रय छेज नहीं, परणाश्रय रहित एवं मति श्रुत ज्ञान थी आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में वेदन में आवे छे। आ बीजो बोलते हो, ये अनुभव कहो या वेदन कहो, यानी जाने छे, ऐसा ही अर्थ है। ये त्रीजो बोल काले लेसु,
जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मां सकर्णम सदा देता।
सरला भी